मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के अंतर्गत अब मैं जो पावर ऑफ एलिमिनेशन है उसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा, लेकिन जो दो छोटी छोटी खबरें हैं पहले मैं उन्हें आपके सामने रख देता हूं। एक देश है पूर्वी तिमोर। नक्शे पर ढूंढने की कोशिश की जाए एशिया में है, ये बहुत ही छोटा सा देश है, मुश्किल से 14-15 लाख की आबादी होगी, बहुत ही छोटा सा देश। पहले पुर्तगाल के अधीन था, उसके खिलाफ उसने स्ट्रगल किया, इसके बाद फिर इंडोनेशिया के अधीन हो गया, फिर इंडोनेशिया के खिलाफ उसने स्ट्रगल किया, फ्रीडम मूवमेंट कह लीजिए, और फिर वो आजाद हो गया। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अभी पूर्वी तिमोर को जो आसियान है, एक संगठन है ASEAN, एशियन भी कहा जाता है, आसियान भी कहा जाता है। हिंदी अखबारों में आपको आसियान पढ़ने को मिलेगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है, साउथ ईस्ट एशियन है, तो भारत के बारे में आप सोच सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या होगी। मैं बताने नहीं जा रहा हूं, मैं यहां कहने केवल ये जा रहा हूं कि आपको इस संगठन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन पर बकायदे इस संगठन के बारे में लेक्चर है। इसके अभी तक 10 सदस्य थे और अब इसके 11 सदस्य हो गए हैं, तो 11वां सदस्य कौन सा हुआ है, वो है पूर्वी तिमोर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सूचना है, छोटी सी ही सूचना आपके लिए पर्याप्त होगी। अखबारों में या आप और कहीं जब पूर्वी तिमोर के बारे में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको एक शब्द और पढ़ने को मिले, और वो शब्द है तिमोर लेस्ते, LASTE, तिमोर लेस्ते। आधिकारिक रूप से अगर इसका नाम अगर आप लेंगे तो होगा तिमोर लेस्ते, लेकिन बोलचाल में ज्यादातर जगह आपको ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर ही पढ़ने को मिलेगा। तो ये दिमाग में आप बसा लें और थोड़ी कोशिश कर लें, नक्शे पर इसे ढूंढ लें। और एक बात और कि 10 सदस्य इससे पहले कौन कौन थे उन पर एक नजर भी मार लें। कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में बकायदे सदस्यों के ऊपर भी पूछ लिया जाता है, और चूंकि ये साउथ ईस्ट एशियन के नेशंस हैं, चूंकि एशिया महाद्वीप है, भारत का इससे संबंध है, तो आपको चाहिए कि आप 10 देशों के नाम बकायदे याद कर लें जो इसके सदस्य हैं। दोस्तों, मुझे एक छोटा सा डेटा मिला, केवल डेटा आपके सामने रख रहा हूं, और वो ये है कि जो विदेशी भारत में आते हैं, भारत में विदेशी घूमने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं, मतलब मुझे चौंकाने वाला डेटा ये लगा कि उसमें से घूमने फिरने के उस उद्देश्य से तो बहुत कम लोग आते हैं, जो सबसे ज्यादा जो संख्या है आने वालों की 21%, वो है इलाज कराने के लिए, जिसे आप मेडिकल टूरिज्म कहते हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिए विदेश से जो टूरिस्ट भारत आते हैं उनमें से 21% केवल मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत आते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि अगर भारत मेडिकल टूरिज्म पर जबरदस्त रूप से काम करे तो टूरिज्म में कितना बेहतर कर सकता है। और हम लोगों ने कई बार बातें की हैं कि किस तरीके से टूरिज्म के नए नए एस्पेक्ट डेवलप होते चले जा रहे हैं, विलेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म तो है ही है, अब धार्मिक स्थानों को लेकर के भी भारत सोचने लगा है कि उन्हें भी टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में डेवलप किया जाए। तो नए नए क्षेत्र इमर्ज हो रहे हैं और भारत में तो अनंत संभावनाएं हैं टूरिज्म की, जबकि विश्व टूरिज्म के नक्शे पर हमारी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। तो चूंकि टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। मैं यहां ये बता दूं कि ये जो डेटा है ये आधिकारिक डेटा है, सरकारी आंकड़ा है, जो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है हमारा, उसकी एनुअल जो रिपोर्ट आई है उसमें ये डेटा मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, एक छोटी सी बात और, इस बीच में अभी तो संसद का सत्र चले कुछ ही दिन हुए हैं, 2 बिल पेश किए गए, एक समान नागरिक संहिता को लेकर के था और जो दूसरा बिल था वो कि अस्पतालों में जब कोई भी पेशेंट भर्ती होता है तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है, या यूं कह लीजिए कि अस्पताल वाले को बहुत बढ़ा चढ़ा करके उसका बिल बना देते हैं। इसको कैसे रोका जाए, या यूं कह लीजिए कि जो पेशेंट है उन्हें शोषण से कैसे बचाया जाए अस्पतालों के, इससे संबंधित एक बिल था, यानी कि दो बिल थे। और ये जो दोनों बिल थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये निजी बिल थे, निजी विधेयक थे, प्राइवेट बिल थे। तो आपको प्राइवेट बिल क्या होता है, कौन लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, इसे कैसे पारित कराया जाता है, इसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। बहुत विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आप जान लेंगे तो बात बन जाएगी। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2 या 3 साल पहले जब शशि थरूर जी ने एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया था, तो उसी को शायद संदर्भ बना करके निजी विधेयक पर एक प्रश्न प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया था। तो थोड़ी सी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए, ऑनलाइन लेक्चर इसके लिए हम लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आइए अब मुख्य विषय की बात करते हैं, और वह है पावर ऑफ एलिमिनेशन पर। इसी के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये कि बहुत लंबे समय से हम लोग पावर ऑफ एलिमिनेशन पर बातें कर रहे हैं और कोशिश हो रही है कि इसे पूरा करें, लेकिन ये पूरा नहीं हो पा रहा है। शायद कुछ ज्यादा ही टूट कर ये सब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है। तो मुझे अब लगा कि नहीं, अब थोड़ी सी नीति बदली जानी चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह है कि नो डाउट कि अपने आप में यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री क्वालिफाइंग के लिए, प्री क्वालिफाई करने के लिए इसे आप एक प्रकार से राम बाण मान सकते हैं, इसके बिना काम तो नहीं चलना है। हाँ, ये बात जरूर है कि मैं अपने ढंग से बता रहा हूं, आपके पास अपना ढंग होगा या दूसरे अपने ढंग से बता रहे होंगे, आप चाहे जहां से भी जाने जैसे भी जाने, लेकिन महत्वपूर्ण तो है ये रामवाण आपके तर्कस में होना ही चाहिए। दूसरी बात कि इस बीच में जो आप लोगों के मुझे मेल मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि उनमें मुझे एक अलग किस्म की बेचैनी महसूस हो रही है। बेचैनी इस बात को लेकर के कि जल्दी से जल्दी इस विषय पर बताया जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया जाना चाहिए, अलग अलग आयामों से बताया जाना चाहिए। और बहुत से मेल तो सीधे सीधे इस बात को लेकर आए हैं कि प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाना चाहिए। प्रैक्टिकल तरीके से बताया जाना चाहिए कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आधार बनाकर बताया जाना चाहिए। तो इस बेचैनी को मैं महसूस कर सकता हूं, और मैं बकायदे इस बेचैनी का सम्मान भी करता हूं कि आप लोगों में कम से कम उन बातों को जानने के लिए इतनी ज्यादा बेचैनी तो है जिनका आपके सफलता से बहुत सीधा सीधा और बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। तो दोस्तों मैंने अब एक निर्णय लिया है, और निर्णय ये लिया है कि अब मैं लगभग लगभग 2 दिनों तक, आने वाले 2 दिनों तक पावर ऑफ एलिमिनेशन पर ही बात करूंगा डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत। नो डाउट कि इस बीच में करंट अफेयर्स तो होंगे, उन्हें मैं थोड़े से समय के लिए स्थगित करता हूं, उन पर हम लोग इकट्ठे बात कर लेंगे। 2 दिन मैंने अभी रखे हैं, हो सकता है कि ये 2 दिन 3 दिन में भी परिवर्तित हो जाए, 4 दिन में भी परिवर्तित हो जाए, या ये भी हो सकता है कि हम 2 दिन तक विशुद्ध रूप से इस पर बात करें और इसके बाद थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स को लेकर के इस पर बात करें, लेकिन इस विषय को छोड़े नहीं। इस विषय पर हम रोज अब तब तक बात करेंगे जब तक कि इसकी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं वे पूरी नहीं हो जाती, और मुझे लगता है कि शायद आप मेरे इस निर्णय को स्वीकार भी करेंगे। तो आइए अब हम पावर ऑफ एलिमिनेशन पर शुरू करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको वॉरेन बफे का सिद्धांत बताया था, इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है, और वो है विल्फ्रेडो पेरेटो का सिद्धांत। विल्फ्रेडो पेरेटो, जब देखिए जब मैं ये सिद्धांत की बात कर रहा हूं तो आप इसे केवल पावर ऑफ एलिमिनेशन तक सीमित मत रखिए, ये मान करके चलिए कि आप एक नॉलेज भी ले रहे हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, अपने निबंध में कर सकते हैं, और दूसरी जगह भी ये काम आ सकता है, लिखने के भी काम आ सकता है, केवल समझने भर की बात नहीं है, राइट? ये जो अल्फ्रेडो पेरेटो हैं, PAREETO, पेरेटो नाम से ज्यादा पॉपुलर हैं, ये बेसिकली इटली के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और 1896 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और उसका नाम ही था पेरेटो प्रिंसिपल, इन्हीं के नाम से ही जाना, पेरेटो प्रिंसिपल, शायद आप लोगों ने सुना होगा। मुझे लगता है कि इसे भी हम पावर ऑफ एलिमिनेशन के तहत ले सकते हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिया वो है 80-20 का सिद्धांत, 80/20। चूंकि उन्होंने यह सिद्धांत 1896 में दिया था, तो डेफिनेटली ये इसके जनक हो गए। और यदि आप वॉरेन बफे के सिद्धांत को लेंगे जो 5/25 है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको इसी के अनुकूल ही मिलेगा, इसी के समानांतर ही मिलेगा। इसीलिए वॉरेन बफे ने कोई बहुत नई बात नहीं की थी, लेकिन चूंकि अभी वो हैं और उन्होंने इस सिद्धांत के तहत बहुत ज्यादा सफलताएं पाई हैं, वो तो जानते हैं आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि मैं जितने भी शेयर खरीदता हूं उसमें जो मुझे प्रॉफिट मिलता है, मैंने 25 शेयर अगर खरीदे हैं तो ज्यादातर जो मुझे प्रॉफिट मिलता है वो 5 शेयरों से ही मिलता है, सभी से बराबर बराबर नहीं मिलता। तो उन्होंने बेसिकली पेरेटो के सिद्धांत को ही अपने तरीके से थोड़ा सा बदलाव करके प्रस्तुत किया था। पेरेटो की थ्योरी क्या है? बहुत ही सिंपल सी थ्योरी, 80/20। इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि जो आउटकम हमारा होता है, हम काम करते हैं और उसके बाद हमें परिणाम मिलते हैं, तो हमें जो परिणाम मिले हैं उस परिणाम का 80% हिस्सा केवल 20% कामों से मिल जाता है। केवल 20%, हम इतना काम कर रहे हैं, हम 100% काम कर रहे हैं, लेकिन 80% जो उसके परिणाम है, जो अब आउटपुट आ रहा है, वो केवल 20% से आ रहा है। दरअसल उनके यहां एक बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचे में वो देखते थे कि जो फल लगते हैं उसमें जो 80% फल उनके लग रहे हैं, ऑलमोस्ट 3/4 कह लीजिए, अब एग्जैक्ट की बात हम नहीं करते हैं, वो केवल 5 प्रकारों में पूरे हो जाते हैं। जो 80% फल लगते हैं वे केवल 20 तरह में पूरे हो जाते हैं, यानी कि 20 तरह के जो थे हैं, या यूं कह लीजिए कि जो 20 पेड़ हैं, हम यहां सरल बना देते हैं इसको, वे 80% फल दे देते हैं, और रिमेनिंग जो 80 पेड़ हैं, 100 अगर हम पूरा मान लें, तो वो बाकी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक जो समझदार व्यक्ति होगा वो करेगा यह कि जो 20 हैं उन पर फोकस करेगा। यह सिद्धांत है पेरेटो का। और दोस्तों, ये केवल पावर ऑफ एलिमिनेशन के लिए ही काम के नहीं है, आपके जिंदगी के लिए भी काम की है। क्या हम जिंदगी में भी ऐसा नहीं करते हैं? सोच करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि नहीं, आपके साथ भी ऐसा ही तो होता है। तो चलिए, इस पर हम लोग कल और बात करेंगे। फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 दोस्तों के नाम हैं, भाग्यश्री जडेजा और आदित्य सोनी रायपुर से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।